الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عصر کے بعد کی مجلس میں قرآن مجید کی سورہ نساء میں سے میراث کے متعلق جو آیات ہے وہ تلاوت کی گئی تھی، پڑھ کر کے سنائی گئی تھی. میراث یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت اہم اور بہت ضروری حکم ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاوے تو جو کچھ اس کی پراپرٹی ہے، جو کچھ اس کا مال ہے، دولت ہے، انتقال ہوتے ہی اس کی مالکی، اس کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہاں تک اس کی پراپرٹی ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اور جیسے ہی انتقال ہوا اس کی مالکی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ سب کی سب دوسروں کی ہو جاتی ہے، وارث داروں کی ہو جاتی ہے. جب انسان کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن اور دفن کا میڈیم قسم کا خرچہ دیا جائے گا. کفن دفن بہت ٹاپ کوالٹی کا بھی نہ ہوئے اور بالکل تھرڈ کلاس قسم کا بھی نہ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بہت اچھی ہے. فرمانے لگے کہ مجھے پرانے کپڑے کے اندر کفن دینا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ نئے کپڑے پہنے. مجھے تم نیا کفن پہناؤ کہ پرانا کفن پہناؤ، جا کر کے قبر کی مٹی کے اندر سونا ہے. خیر یہ تو ان کی بہت اونچے درجے کی یہ بات ہے، لیکن کسی کا انتقال ہوئے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے میڈیم قسم کا کفن دفن کا خرچہ دینا چاہیے. اس کے بعد جو اس کے اوپر قرض ہوتا ہے، चाहे कर्ज कैश की शक्ल में हो, चाहे कर्ज किसी का माल हो, कर्ज दूसरे नंबर के ऊपर चुकाना चाहिए, अदा करना चाहिए। आजकल जनरल ये हो रहा है कि किसी का इंतकाल होने के बाद लोग उसके कर्ज की फिक्र नहीं करते, हालांकि कर्ज को चुकाना शरीयत में बहुत जरूरी है। हदीस में आता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के ऊपर कर्ज बाकी होता और इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते थे। यूं फरमाते थे कि तुम लोग इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर कोई आदमी जवाबदारी ले लेवे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेवे कि हुजूर इस मरहूम के ऊपर जो कर्ज है उसको अदा करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उसका कर्ज अदा करूंगा। तो फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। उससे अंदाजा लगाओ कि मरने वाले का मरहूम का कर्ज कितना इंपॉर्टेंट होगा कि कर्ज छोड़ के आदमी मरे, कर्ज चुकाना बाकी है और इंसान का इंतकाल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज भी पढ़ाने के अंदर आगे पीछे होते थे। इसीलिए किसी का इंतकाल हो जाए तो सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर यह काम करो कि उसके माल में से उसका कर्ज अदा कर दो। कभी तो कर्ज अदा करने के अंदर उसकी टोटल प्रॉपर्टी, टोटल बैंक बैलेंस चला जावे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले दूसरे नंबर पर कर्ज अदा करो। बाज मरतबा पीछे औलाद ये सोचती है कि कर्ज अदा करने जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, तुम्हारे लिए बचे या न बचे, तुम मरहूम की तरफ से कर्ज पहले अदा करो ताकि अल्लाह के यहां कब्र के अंदर उसकी नजात हो जावे। फिर तीसरे नंबर के ऊपर उसने अगर कोई वसीयत की है तो वो वसीयत में पहली चीज ये देखी जाएगी कि जो शरीयत के अंदर कुरान की आयत में जिनको वारसदार कहा है उनके हक के अंदर वसीयत चलती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिंदगी का लास्ट हज किया, हज्जतुल विदा किया, तो हज्जतुल वदा के अंदर हुजूर ने जो खुतबा दिया था, जो बयान फरमाया था, उसमें इरशाद फरमाया अलाला वसीयत लिवारिस, अलाला वसीयत लिवारिस। ध्यान से सुन लो, वारसदार के लिए वसीयत नहीं हुआ करती। बेटा वारसदार है, बेटी वारसदार है, वाइफ वारसदार है, तो उनके लिए आदमी की वसीयत चलती नहीं है। वसीयत तो चलेगी जिनको बाकायदा वारसा मीरास नहीं मिलती उन लोगों के बारे के अंदर वसीयत चलती है। एग्जाम्पल, किसी ने वसीयत कर दी कि मेरी प्रॉपर्टी में से एक दुकान चिपाटा जामे मस्जिद के अंदर मेरी तरफ से है, तो मस्जिद वारसदार नहीं है, तो मस्जिद के लिए जो उसने वसीयत की है तो वो वसीयत जायज है, दुरुस्त है। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में बयान में फरमा दिया था कि जो वारसदार होते हैं उनके लिए वसीयत का एतबार नहीं है। एक इस्तिस्नाई शक्ल उसके अंदर है। वसीयत के लिए एक दूसरी कंडीशन ये है कि 1/3 में वसीयत चलेगी, 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं चलेगी, यानी टोटल प्रॉपर्टी में से 1/3 तक वसीयत चलती है, उससे ज्यादा वसीयत चलती नहीं है। अब एक आदमी इंतकाल का वक्त करीब आया, पूरी जिंदगी तो अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च नहीं किया, अब देखा कि मर रहा हूं, सब छोड़ छोड़ करके जाना है और दूसरे लोग मस्त मजे करेंगे, तो मरते मरते क्या कह रहा है, मेरी टोटल प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए। तो अब तो अल्लाह ताला भी ये कानून कहते हैं कि तू मरते मरते वसीयत करता है तो टोटल की वसीयत नहीं चलेगी। जब तू हेल्थी था, जब तंदुरुस्ती थी, तब तो मस्जिद के लिए दिया नहीं, अब देखा कि मरने पड़ा तो अब कहता है कि टोटल प्रॉपर्टी मेरी मस्जिद में, तो 1/3 तक चलेगी, बाकी 2/3 उसकी फैमिली में, उसके बच्चों को, लड़कों को, लड़की को, वाइफ को, उनको हिस्सा मिलेगा। कभी आदमी क्या सोचता है कि लड़के लड़की ने मेरी खिदमत नहीं की, वाइफ ने खिदमत नहीं की, तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वसीयत कर दो कि मेरी टोटल प्रॉपर्टी मस्जिद में दे दो मरते वक्त पर, ताकि नाफरमान लड़कों को ना मिले, नाफरमान लड़की को ना मिले, नाफरमान वाइफ को ना मिले, तो ये वसीयत भी चलेगी नहीं, 1/3 तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। भले वो लड़के लड़कियों ने खिदमत नहीं की, वो गुनहगार है, कुसूरवार है कि बाप की खिदमत करके जन्नत कमानी थी, हस्बैंड की शौहर की खिदमत करनी थी नहीं की, वो उनका काम है, उसकी सजा उनको दुनिया आखिरत में मिलेगी, लेकिन अब टोटल वसीयत नहीं चलेगी, 2/3 में उनको हिस्सा मिलेगा। फिर चौथे नंबर के ऊपर जो कुछ उसकी प्रॉपर्टी है वो सब उसके वारसदार लड़के लड़की बीवी और बाज मसलों के अंदर भाई बहन, बाज कंडीशन के अंदर दूर के रिलेटिव्स, और अब्बा अम्मा जिंदा हो तो वो, हस्बैंड का इंतकाल हो तो वाइफ को, वाइफ का इंतकाल हो तो हस्बैंड को, इन सब को मसले के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक, अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक तकसीम करना। और कैसे तकसीम करना, उसके लिए तो आपको दारुल उलूम में दाखला लेकर सिराजी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको मैं एक मजलिस के अंदर नहीं समझा सकता। जो लड़के दारुल उलूम में आते हैं, पांच पांच साल मसले मसाइल पढ़ते हैं, फिर इनको ये मीरास के वारसे के मसाइल हम पढ़ाते हैं, तो एक साल भर पढ़ाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। एग्जाम्पल में कालू भाई मर गए, लालू भाई मर गए, इतने लड़के छोड़े, इतनी लड़की छोड़ी, इस तरह इनको हम प्रैक्टिस कराते हैं, तब जाकर के कुछ मसले वो समझते हैं। तो एक मजलिस के अंदर इम्पॉसिबल है, मैं आपको मसले नहीं समझा सकता। इसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो किसी मुफ्ती साहब के पास चले जाओ। इनका इंतकाल हो गया, ये बीवी है, ये लड़के हैं, ये लड़की है, ये अब्बा है, ये अम्मा है, ये प्रॉपर्टी है, ये बैंक बैलेंस है, मुफ्ती साहब आप डिवाइड कर दो कुरान के रूल के मुताबिक, आप अल्लाह के रूल के मुताबिक डिवाइड कर दो। अब मुफ्ती साहब आपको गाइडलाइन देंगे, काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, लिख करके देंगे, उसके मुताबिक तकसीम कर दो। ये एकदम इजी और आसान तरीका है। अब हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में बहुत बड़ा गुनाह ये हो रहा है, बहुत बड़ा गुनाह, बड़ा खतरनाक गुनाह, कि फादर या मदर का इंतकाल हो गया लेकिन लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी को कुरान के कानून के मुताबिक डिवाइड नहीं करते, तकसीम नहीं करते, वेचनी नहीं करते। अगर बड़ा भाई है, उसके हाथ में सब कंट्रोल है, तो वो सब लेकर के बैठ जाएगा, किसी को देगा नहीं। दो तीन भाई के पास थोड़ा थोड़ा है, वो लेकर बैठ जाएंगे, बहन को नहीं देंगे, मम्मी को नहीं देंगे, और लेकर के बैठ जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक, बहुत बड़ा गुनाह है जो हो रहा है। और उसमें ये भी होता है, माफ कराने का हीला, माफ कराने का हीला। अब मैं उसको इंग्लिश में कैसे समझाऊं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। माफ कराने का हीला का मीनिंग क्या होता है? अब्बा का इंतकाल हो गया, बहन के पास जाएंगे, बहन माफ कर दे नहीं? मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी माफ कर दो नहीं? मरते दम तक हम आपकी खिदमत करने ही वाले हैं, तो खिदमत करेगा सवाब मिलेगा, मां की खिदमत करेगा जन्नत मिलेगी, लेकिन अब्बा की प्रॉपर्टी के अंदर एज ए वाइफ मां को जो हिस्सा है, वो हिस्सा तो तुझे कंपलसरी देना पड़ेगा। बहन को जाकर कहेंगे, बहन जब तेरी शादी हुई थी ना, तो अब्बा ने तुझे 50 तोला गोल्ड दिया था, अब्बा ने तुझे घर बना के दे दिया था, अब अब्बा की प्रॉपर्टी में तुझे कुछ नहीं, माफ कर दे बहन। अब्बा ने उसकी शादी के वक्त पर बहन को गोल्ड दिया था, गिफ्ट दी थी, हदिया दिया था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद बहन को जो बहन का हिस्सा कुरान ने बतलाया, उसके मुताबिक देना भाई के लिए फर्ज है। अगर नहीं देगा तो ये भाई फर्ज छोड़ने का गुनहगार होगा, फर्ज छोड़ने का गुनहगार बनेगा। इसीलिए माफ कराने के हीले भी मत करो। पहले मुफ्ती साहब के पास डिवाइड करवाओ मसले के मुताबिक, बहन तेरा इतना, भाई तेरा इतना, मम्मी तुम्हारा इतना, सबको बतला दिया, सबको दे दिया। अब कोई बहन आपको गिफ्ट देवे, लो भाई मेरा ये हिस्सा आया, मैं तुमको गिफ्ट देती हूं। देने के बाद गिफ्ट होती है। खाली खाली जुबानी माफ करा लेने से, और बाद लोग क्या करेंगे, कोई लॉयर के पास, सॉलिसिटर के पास कोई आर्टिकल लिखवाएंगे, कुछ लिखवाएंगे, एफिडेविट लिखवाएंगे, और बहन के पास जाएंगे, खुशी खुशी में मीठी मीठी दो बात करेंगे, और जाकर कहेंगे बहन सही करी देनी आना भाई, सिग्नेचर कर देनी इसके ऊपर, और सिग्नेचर करा के ले आए का माफ हो गया। अल्लाह के यहां इस तरीके से माफ नहीं होगा, ये धोखा है, ये बनावट है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो रूल बयान किया, कानून बयान किया, उसके मुताबिक किसी मुफ्ती साहब के पास पहले डिवाइड कराओ, तकसीम कराओ, हर एक को बतला दो, और फिर आपस में अगर कोई किसी को गिफ्ट देना चाहे उसकी खुशी की बात है। खाली खाली सिग्नेचर करा करके, खाली जुबान से बुलवा करके माफी कराने का ढोंग मत करो। अल्लाह के यहां माफी नहीं होगी, बल्कि जिम्मे में फर्ज बाकी रहेगा। और आगे की बात बतलाऊं, मैंने शुरू में कहा ना आपको कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अब प्रॉपर्टी अब्बा की नहीं रही, सब भाई बहन की हो गई। अब क्या करना चाहिए, एक प्रैक्टिकली किस्सा सुनाता हूं, इस नियत से सुनाता हूं कि आप लोग अमल करोगे, कहो इंशाल्लाह। फॉरेन में एक जगह का किस्सा है, एक बड़े दीनदार आदमी थे, उनकी वाइफ भी दीनदार थी, शोहर का इंतकाल हो गया। अब ये औरत देखिए, शोहर का इंतकाल हो गया तो किचन लॉक कर दिया कि अब तक ये मेरा घर, मेरा किचन, जो कुछ है मेरे हस्बैंड का था, वो ऑनर थे, वो मालिक थे, अब इंतकाल कर गए, अब इसके अंदर मेरा हिस्सा, मेरे लड़कों का हिस्सा, मेरी लड़कियों का हिस्सा, सब का हिस्सा लग गया है। तो अभी किचन लॉक करो। उसने बाहर कहीं खाने का ऑर्डर दिया है कि तीन दिन शरीयत के अंदर मरने वाले के ऊपर सोग मना सकते हैं, तीन दिन तक गम मना सकते हैं। तीन दिन के बाद बीवी तो इद्दत में रहेगी, चार महीने दस दिन तक, बाकी किसी के लिए तीन दिन से ज्यादा गम नहीं। तीन दिन तक लॉक कर दिया किचन, बाहर से रेडीमेड खाना मंगवाया। चौथा दिन आया तो एज ए मदर सब लड़के लड़कियों को बुला के बिठाया, चलो बैठो, आज ही तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तकसीम करो, किसी मुफ्ती साहब को लाओ, ये बैंक बैलेंस है, इतने घर है, इतने प्लॉट है, इतना गोल्ड है, इतनी सिल्वर है, आज की आज डिवाइड करो, वहां तक मैं किसी को उठने नहीं दूंगी, इद्दत में है, लेकिन हिम्मत से शरीयत पर अमल कराया, और रात तक के अंदर पूरी प्रॉपर्टी तकसीम करवाई कि ये लड़के का, ये लड़की का, ये मेरा, ये सब तकसीम करवाई, और जिसके हिस्से में जो आया सबको दे दिया, लो आज से सब आजाद। ये है असल शरीयत का तरीका। अब हम लोग क्या कहते हैं, शैतान एक बहुत अच्छी बात समझाता है, शैतान है ना, वेरी एक्टिव और वेरी क्लेवर पर्सन है। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, शैतान क्या कहता है, एक जगह के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह। जब फादर का इंतकाल हो गया तो मैंने उनको समझाया, भाई एक महीना हो गया, दो महीने हो गए, छह महीने हो गए, एक साल हो गया, जनरल बयान से कोई बात नहीं ली तो मैंने स्पेशली उनको कहा कि भाई जनरल बयान पर तुम्हारे दिल पे असर नहीं होता है, अल्लाह के बंदो डिवाइड करो, मसले पर अमल करो। तो मुझे क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब हमारा बिजनेस तो जॉइंट चलता है, हम भाई बहनों में आपस में बहुत मोहब्बत है, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बहुत है, और हम तो जॉइंट फैमिली में जॉइंट प्रॉपर्टी जॉइंट बिजनेस हमारा चलता रहता है, ये डिवाइड वाली बात आप मत करो। मैंने उनको कहा कुरान और अल्लाह के हुक्म से आगे कोई मोहब्बत नहीं हो सकती, कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं तुमको समझाता हूं, तकसीम कर लो अल्लाह के कानून से, बात नहीं मानी। दो साल तीन साल चला, मस्जिद में बैठा हूं, रमजान की रात है, इस वक्त तो उनकी पोजीशन ये है कि भाई भाई का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, बहन बहन से बात करने तैयार नहीं, फैमिली के अंदर जो शादी के एंगेजमेंट हुए थे वो भी टूट गए, और ऐसी लड़ाई क्रिमिनल केस हो गए। अब उनकी समझ में आ रहा है, लेकिन अब लड़ाई बहुत आगे निकल गई, कोर्ट मैटर है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, और आपको मालूम है कि ये जितने भी सिविल क्राइम्स हैं और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी के क्राइम्स होते हैं उसमें तो आपके ग्रैंडसन आ जाएंगे, वहां तब भी कोई डिसीजन आने वाला नहीं है, झगड़े चलते ही रहेंगे, और जो है कोई कोर्ट जो है इसमें कोई डिसीजन आपको देने वाली नहीं है। इस्लाम ने, कुरान ने, शरीयत ने जो लॉ बतलाया, जो कानून बतलाया कि मरने वाले का इंतकाल हो तीन दिन ठीक है, चौथे दिन बैठो और फौरन तकसीम करो कुरान के कानून के मुताबिक, उसी के अंदर जोड़ है, उसी के अंदर मोहब्बत है, और उसी के अंदर खैर और बड़ी बरकत है, और हरेक का हक मिलेगा। और देखिए ये कोई एहसान नहीं है, पास मर्तबा क्या होता है, बड़ा भाई जो है तकसीम करेगा और यूं समझेगा मैंने एहसान किया दिया, एहसान नहीं, वो तो अपना राइट ले रहा है, हक ले रहा है, और नहीं देगा तो अल्लाह के यहां गुनहगार होगा, अल्लाह के यहां देना पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा। एक जगह मैंने बयान में कहा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए, बहुत कमजोरी थी, ऐसी हालत में मस्जिद में आकर मिंबर पर बैठकर ऐलान किया कि किसी का कोई हक बाकी हो तो मुझसे ले लो, कोई हक बाकी हो तो वसूल कर लो, ऐलान किया मस्जिद में खड़े होकर। मैंने कहा आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करने की कि मेरी एज 70 ईयर हो गई, 80 ईयर हो गई, 60 ईयर हो गई, किसी का कोई हक हो तो मेरे पास ले लो, इसीलिए कि ऐलान करेंगे तो शायद फिर मस्जिद से घर जाने के लिए घर ही बाकी नहीं रहेगा, फिर मस्जिद में ही लाइफ टाइम एहतिकाफ का खोड़ा पकड़ लेना पड़ेगा अगर सही माने में आदमी ऐलान करे तो। इसीलिए कि लोगों के इतने हक बाकी है, इल्ला माशा अल्लाह कोई अच्छा अल्लाह का बंदा हो वो अलग बात है। इसीलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, ये कुरान का कानून है, कुरान की बहुत सारी आयतों में अल्लाह ने ये मसाइल बयान फरमाए लिहाजा इसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है और उम्मत के अंदर इस वक्त अमल नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सिस्टम बनाओ, ये माहौल बनाओ कि पेरेंट्स का इंतकाल होवे, अब्बा का अम्मी का, फौरन किसी मुफ्ती साहब के पास बैठो और बैठ करके प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, प्लॉट, फ्लैट सबको डिवाइड कर दो, फौरन तकसीम कर दो। ये अल्लाह का कानून है। और उसमें एक बात और भी याद रखो, अल्लाह आपकी मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह लंबी बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन एक हदीस में आपको समझाना चाहता हूं, मौत कब आ जाए कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। किस वक्त अल्लाह के यहां से बुलावा आ जाए, कुरान में अल्लाह फरमाते वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह के यहां से जब मौत का टाइम आएगा तो एक मिनट एक सेकंड आगे पीछे नहीं होगा और मौत का फरिश्ता रूह लेकर के जाएगा। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अब अल्लाह से हमारी उम्मीद है, दुआ है और दवाएं भी खा रहे हैं कि उम्र लंबी हो गए। अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं और दवा भी खाते हैं कि उम्र लंबी हो गए, ट्रीटमेंट भी कराते हैं। लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जावे। इसीलिए सुनो, हदीस का खुलासा सुनो, अगर हमारे जिम्मे किसी का कर्ज है कैश में या माल में, या किसी का हक चुकाना बाकी है, या किसी की अमानत हमारे पास है, तो पहले दर्जे में तो अदा कर दो। और अभी अदा करने की चुकाने की पोजीशन नहीं है तो राइटिंग में लिखो, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे जिम्मे इतना चुकाना जरूरी है, और उसके ऊपर अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सबको बताओ और सिग्नेचर करके उनको विटनेस बना लो कि देखो मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अभी मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं चुकाऊं, मैं अदा करूं, अगर मेरी मौत आ जावे तो ये कर्जा तुम अदा कर देना ताकि अल्लाह के यहां मेरी नजात हो जावे। ये काम तो इस रमजान में हरेक कर लो। अगर अपने जिम्मे कोई कर्ज है, किसी का हक है, किसी की कोई अमानत है, किसी की कोई चीज पहुंचानी है, तो उसको जुबानी नहीं, राइटिंग में और विटनेस के साथ, और उसको कंपलसरी रेडी करके रख दो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग माल दौलत की लालच में ऐसे पागल और दीवाने बने हुए हैं कि देने जाएंगे तो सब चला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कुरान में कितनी बड़ी बात फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कानून से, अल्लाह के ऑर्डर से, अल्लाह के हुक्म से, शरीयत के लॉ से तुमको गाफिल न कर देवे। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
جو آدمی بھی یہ سوچے گا میرے پاس اتنی پراپرٹی ہو جاوے، اتنی دولت ہو جاوے، اتنا مال، اتنا بیلنس ہو جائے اور لوگوں کا حق باقی رہے، تو آدمی بہت بڑے نقصان میں ہے. دنیا میں بھی نقصان، موت کے بعد بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان کے اندر ہے. یہ دنیا کی دولت ہے کیا چیز؟ کورونا کووڈ کے زمانے میں ملینر، بلینر، ٹریلینر سب چلے گئے، ینگ ایج کے لوگ بھی چلے گئے. اللہ نے زندگی دی ہے تو حقوق ادا کر دو، ہر ایک کا حق پہنچا دو. اور ابھی حق ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو رائٹنگ میں لکھ کر کے رکھ دو. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ ہم کو اس چیز کی طرف دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو یہ سورۃ النساء کی جو آیتیں پڑھی تھی کہ نام تو ہے سورۃ النساء، یعنی ویمنس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ویمنس اور عورتوں کے نام پر یہ سورت بیان فرمائی، اس میں بہت سارے لو اور قانون اور مسئلے اللہ نے بیان فرمائے. اس میں ایک اسپیشلی میراث کا، وارثہ ویچنی کا قانون ہے جس کے اوپر امت میں اس وقت عمل نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اگر قرآن کے لو اور مسئلے اور قانون کے مطابق آپ ڈیوائڈ کر دو گے، تقسیم کر دو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی فیملی میں محبت پیدا کریں گے، محبت دیں گے، جوڑ دیں گے، برکت عطا کریں گے. آدمی یوں سوچتا ہے کہ میں ڈیوائڈ کر دوں گا تو کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت دیں گے اور اللہ فیملی میں محبت بھی عطا کریں گے. اللہ آپ کو، مجھے، پوری امت کو اس امپورٹنٹ مسائل کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو میراث کے قانون کے اوپر دھیان دینے والا بناوے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کی مجلسوں کو بے انتہا قبول فرماوے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بناوے. اللہ تعالی ہم سب کو موت ایسی حالت میں عطا فرمائے کہ جب میرا اور آپ کا جنازہ نکلے ایک آدمی بھی ہم سے مانگنے والا نہ ہو. یہ ٹرائی کرو کہ جس دن ہمارا جنازہ نکلے ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہے کہ میرا اس سے لینا باقی تھا، میرا اس سے لینا تھا، میری زمین نہیں دی، میرا پلاٹ نہیں دیا، میرا قرض نہیں دیا، میرا حق نہیں دیا. ایک آدمی بھی ایسا باقی نہیں رہے. اللہ کرے کہ ہمارا جنازہ اس حال میں اٹھے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا اچھا جنازہ ہوگا، بہترین موت ہماری ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اچھی زندگی اور وقت کے اوپر اچھی موت عطا فرمائے. اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، رمضان میں جہاں ہم عبادت کریں گے وہاں یہ لوگوں کو حق ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی برکت سے اللہ کے یہاں ہماری عبادت قبول ہوگی، قبول ہوگی اللہ کے یہاں ہماری عبادتیں. لہذا ان چیزوں کی طرف دھیان دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے مسائل بہت باریک ہیں، اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو آپ بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جتنی بات علم میں ہوگی انشاءاللہ اتنی رہنمائی کریں گے. دعا کر لو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بناوے، ہمیں حق کو ادا کرنے والا بناوے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ اے اللہ یہ رحمت کا اشرہ شروع ہوا ہے رمضان کی مبارک راتیں ہیں اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرماؤ رحمتوں سے مالا مال فرماؤ ہمیں حق ادا کرنے والا بناؤ اے اللہ جس دن موت آئے ہمارا جنازہ اٹھے اے اللہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہوئے اے اللہ ایسی موت عطا فرما کہ کسی کا کوئی حق باقی نہ ہوئے اس حال میں ہماری موت ہمیں عطا فرما وقت کے اوپر عافیت والی عزت والی ہمیں موت عطا فرما اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا فرماؤ عمر میں برکت عطا فرماؤ حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام عطا فرماؤ اے اللہ اس شہر میں جتنے بھی ایمان والے ہیں خصوصاً ہمارے ایشین مسلمان اے اللہ ان کے گھر بار کی حفاظت فرماؤ ان کی جان مال کی حفاظت فرماؤ ان کے کاروبار کی حفاظت فرماؤ ان کی اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرماؤ ان کے ایمان اعمال میں برکت عطا فرماؤ آپس میں جوڑ محبت عطا فرماؤ اے اللہ قیامت تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایمان اسلام پر ان کو اور ان کی نسلوں کو باقی اور قائم فرماؤ اے اللہ یہاں کے قیام میں جتنی مجلسیں ہوئی اس کو بے انتہا قبول فرماؤ آپ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ جنہوں نے محبت کا خدمت کا حسن سلوک کا برتاؤ کیا ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماؤ اے اللہ مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرمائیے حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرماؤ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين